بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے عراق کے صوبہ المبار میں فوجی آپریشن کے تناظر میں، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، عراق کے صوبہ الانبار میں القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گردوں کا فتنہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ اس صوبے کے دو تین چھوٹے بڑے شہروں پر دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد عراقی حکومت کو صوبہ الانبار میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کرنا پڑا۔ عراقی فوج نے شہر الانبار اور الرمادی کو دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے اور فلوجہ کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ شہر سے عام شہریوں کو نکالنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جس کے بعد کسی بھی وقت فیصلہ کن آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن جب شروع کر دیا جائے گا تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک القاعدہ یا دولت الاسلامیہ فی العراق و شام سے وابستہ ایک ایک دہشت گرد ختم نہیں کر دیا جاتا۔ صوبہ الانبار میں فوجی آپریشن کے تعلق سے عراق کی سبھی سیاسی جماعتوں اور شیعہ و سنی علماء اور قبائلی سرداروں نے حکومت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عراق میں کافی عرصے سے القاعدہ سے وابستہ تکفیری عناصر سرگرم ہیں، جنہیں سعودی حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ شام میں سامراجی اور صہیونی ایجنڈے کے نفاذ میں ناکامی کے بعد اب سعودی حمایت یافتہ عناصر نے عراق کا رخ کیا ہے۔ اگرچہ امریکی حکومت نے عراق میں دہشت گردوں کے خلاف حکومت کے فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن عراق میں سرگرم دہشت گردوں کو امریکہ کی بھی بالواسطہ پشت پناہی حاصل رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مشرق وسطی میں تکفیریت کے فتنے کو سعودی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ جبہۃ النصرہ اور دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، جبہۃ الاسلامیہ اور القاعدہ اور سعودی حکومت سے وابستہ انتہا پسند دہشت گرد گروہ ہیں، لیکن امریکہ نے سعودی حکومت کی ایک بار بھی حتیٰ لفظی سرزنش بھی نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت خطے میں امریکی اور صہیونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم عراق کے صوبہ الانبار کی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی اس صورتحال میں بیرونی عوامل، خاص طور پر سعودی حکومت کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے کردار بھی زیر بحث آئے گا، اور موجودہ فتنے میں ترک حکومت کا کردار بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنے گا۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
عراق کے صوبہ الانبار میں فوج کی کارروائی جاری، اور فوج نے صوبے میں دہشت گردوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ عراق اور شام میں سرگرم دہشت گرد گروہ داعش نے عراق میں اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی فوج اور اس ملک کے قبائلی جنگجوؤں کے حملوں میں اس گروہ کو سخت نقصان پہنچا ہے، اور اس میں داعش کے کئی اہم جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ داعش کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تنظیم کو الانبار میں سخت مسائل کا سامنا ہے۔ اس سے قبل عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے اس ملک کے شہر فلوجہ کے عوام اور قبائلی افراد سے دہشت گردوں کو اس پورے علاقے سے نکال باہر کرنے کی اپیل کی تھی۔ نوری المالکی نے اسی طرح عراقی فوج سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ شہر فلوجہ کے رہائشی علاقوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ اس سے قبل مغربی عراق کے صوبہ الانبار کی گورننگ کونسل نے شہر فلوجہ میں جاری دہشت گردانہ کارروائیوں کے سبب 9,000 عراقی کنبوں کے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جانے کی خبر دی تھی۔ الانبار میں فوج کی کارروائی کو عراق کی عوامی اور دینی، حتیٰ اہل سنت کی تنظیموں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تنظیم فتویٰ اہل سنت عراق کے سربراہ نے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسامہ نجیفی کو صوبہ الانبار میں فتنے کا بانی قرار دیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے بعض بیرونی حمایت یافتہ عراقی گروہوں کی صورتحال کا بخوبی جائزہ لے کر، اور بعض عراقی گروہوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے صفائے تک فوجی کارروائی جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ بعض خبری ذرائع کے مطابق صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں عراقی فوج کے ساتھ قبائلی افراد بھی شریک ہیں، اور قبائلی تعاون کی وجہ سے ہی فوج کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے شام اور لبنان کے واقعہ سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دراصل شام میں فوج کو دہشت گردوں کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں کی وجہ سے داعش، القاعدہ اور النصرہ جیسے دہشت گرد گروہ شام چھوڑ کر لبنان اور عراق کا رخ کر رہے ہیں۔ القاعدہ اور داعش کے دہشت گرد عراق کے المبار صوبے، خاص طور پر فلوجہ میں اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ کامیابی انہیں موصل صلاح الدین اور المبار صوبوں کی خاص سماجی اور مذہبی صورتحال کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل عراق میں بہت سی طاقتیں اپنے خاص اہداف کی وجہ سے بہت پہلے سے فرقہ وادیت کا زہر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ عراق کو فرقے کی بنیاد پر کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی بھی سازش عالمی پیمانے پر تیار کی گئی تھی، اور اس میں کچھ علاقائی ممالک تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں جس طرح سے عراق میں دہشت گرد گروہ سرگرم ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے المبار صوبے کو مرکزی حکومت سے الگ تک کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ شام میں منہ کی کھانے والی طاقتیں لبنان اور عراق میں حالات خراب کر کے انتقام اور اپنی شکست کی تلافی کے در پہ ہیں۔ دراصل عراق اس سازش کا شکار ہو رہا ہے جس کے تحت شام، لبنان اور عراق میں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سازش کا مقصد علاقے میں ہمیشہ بدامنی قائم رکھنا ہے تاکہ امریکہ سمیت کچھ مغربی ممالک کے سامراجی مقاصد پورے ہوں، اور سعودی عرب جیسی کچھ علاقائی حکومتوں کی جمہوریت کی لہر کی طرف سے تشویش ختم ہو۔ فرقہ واریت کے سہارے ان کا آمرانہ نظام چلتا رہے، مگر دہشت گردوں کے خلاف نوری مالکی کی حکومت نے جس انداز میں کارروائی شروع کی ہے، اس سے امید یہی ہے کہ عراق کے بارے میں سامراج اور اس کے مقامی ایجنڈوں کی سازش فی الحال غیر مؤثر ہو جائے گی۔
جی ناظرین، عراق کے صوبہ المبار میں فوجی آپریشن کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے شرکت کریں گے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس۔ لندن اسٹوڈیو سے بحث میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور، سابق سیاستداں اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے معروف دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر کو۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے۔ قندیل عباس صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
قندیل عباس صاحب، عراق کے صوبہ المبار میں تکفیری دہشت گردوں کے فتنے اور بغداد حکومت کی جانب سے فوجی آپریشن شروع کرنے کے فیصلے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
میرا خیال یہ کہ عراق میں جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پیچھے ایک لمبے عرصے سے یہ اختلافات چلتے آ رہے ہیں، اور اس میں بہت سی سازشیں آلریڈی انوالو رہی ہیں، لیکن جو حالیہ لہر اٹھی ہے فرقہ وارانہ اختلافات کی، اور اس میں جو شدت پیدا ہو رہی ہے، اور خصوصاً المبار جو صوبہ عراق کا، اور اس میں بھی فلوجہ کو اور رمادی کو جو مرکز بنایا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ عراق میں ایک پچھلے لمبے عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوئی، اور لوگ شیعہ، سنی، کرد، عرب سب مل کر عراق کی ترقی کے لیے کوشاں تھے، اور بڑی طاقتیں جو اہداف لے کر عراق میں آئی تھیں، عراق پر حملے کیے تھے، اور عراق پر حملوں کے بعد ان کے جو مقاصد تھے، نہ صرف وہ ان کو حاصل نہ ہو سکے، بلکہ ان کو یہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عراقی عوام آپس میں متحد ہو گئے، اور متحد ہو کر انہوں نے غیر ملکی فوجوں کو بھی یہاں سے نکالا، اور یہ عہد کیا کہ عراقی مل کر اپنے ملک کو سنواریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اتنے عرصے کی ایک پرامن ماحول کو ایک دفعہ پھر ڈسٹرب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں، اور وہ عوامل خاص طور پر یہ ہیں کہ جو اسلامی بیداری کی تحریک مشرق وسطی میں شروع ہوئی تھی، اور اس اسلامی بیداری کی تحریک نے آہستہ آہستہ بڑی بڑی شہنشاہیتوں کو اور بڑے بڑے شاہوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، تو ان کو یہ نظر آنے لگا کہ اس اسلامی بیداری کی تحریک کو اس کے اپنے جو اصل ہدف ہے اس سے ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو منحرف کیا جائے، ورنہ وہ ان کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ پھر جب مصر کے اندر یہ تحریک پہنچی، اور وہاں پر ایک 40-42 سالہ پرانی ڈکٹیٹرشپ کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، اور وہاں پر اسلام پسند گروپ اقتدار میں آئے، تو ان کے اندر بھی اس انداز میں مذہبی اختلافات پیدا کیے گئے، اور کچھ بیرونی عناصر نے آ کر ایسا ان کو ڈائیورٹ کیا کہ وہاں خلف شار کا شکار ہو گئے وہ. اسی طرح پھر شام کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرامن ملک تھا جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لوگ سیاسی پروسیس کے اندر شامل تھے, وہاں پر بھی دنیا بھر سے اسی طرح جیسے افغانستان میں جہاد کے نام پر لوگوں کو جمع کیا, شام میں بھی جمع کر دیا گیا. اب شام کے حالات نے ڈائریکٹ متاثر کیا لبنان کے حالات کو, اور لبنان کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب نے $3 بلین کا ایک اعلان کیا کہ وہ لبنانی فوج کو $3 بلین دیں گے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا, اس لیے کہ یہ جو $3 بلین کی بات ہوئی ہے اسلحہ خریدنے کے لیے اور لبنانی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے, یہ عام طور پر خیال کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے مقابلے میں اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح یمن میں, بحرین میں, اور پھر خود پاکستان اور افغانستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر مذہب کو بنیاد بنا کر ایسے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو عالمی سطح پر ایک اسلامی بیداری کا ایک پازیٹیو تاثر قائم ہوا ہے اس کو خراب کیا جا سکے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہے عراق کے اندر جو اس وقت اختلافات ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر جو الانبار کے صوبے میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس کو جو مغربی میڈیا ہے اور عرب دنیا کا میڈیا ہے خصوصاً, وہ اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی کسی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, حالانکہ معمولی سی ایک تحریک ہے جو اسی جگہ پر اس کو دبا دیا گیا, اور وہاں کے خود شیعہ اور سنی عوام نے اپنے اتحاد سے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دہشت گرد عناصر کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اور وہ اپنی سر اٹھانے سے پہلے ہی ان کو کچل دیا گیا. میں سمجھتا ہوں باقی رہے سے لوگ بھی, جو عراقی فوج ہے وہاں کی عوام ہے, وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی قسم کی کامیابی مل سکتی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے لندن اسٹوڈیو میں ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی زیدی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس وقت عراق کے صوبے الانبار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟
جی یہ اس کو علیحدہ سے رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا, یہ پورا جو اس ریجن میں اس وقت معاملہ بدلا ہے اس کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے. اور چونکہ سعودی عرب بہت خوش نہیں ہے اس وقت امریکہ کی اس ہاتھ بڑھانے کی, ایران کی جانب جو ہاتھ بڑھا اور اس میں تھوڑی بہت جو پیش رفت ہوئی, تو وہ بہت ناراض ہیں. اور جو پرنس بندر ہے اس کے بیانات سے بھی اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کی لہر انہوں نے تیز کی ہے پورے مڈل ایسٹ میں, اور اس کی جو ڈانڈے ہیں وہ جا کر اس سلفی شریعت کے نفاذ کی جو مسلم دنیا میں کوشش ہو رہی ہے اس سے ملتے ہیں. اور یہ جو اس وقت نئی وہاں دہشت گردی اور جو کلیش شروع ہوا ہے وہ اس کو انٹرسٹنگلی مغرب میں پچھلے یعنی چند ہفتوں پہلے تک جو معاملہ تھا وہ لفظ اور اصطلاح یوز کی جاتی تھی سلفیز یا وہابیز, ان اس گروہ کو نام دیا جاتا تھا. اب یہ شفٹ ہو رہا ہے پچھلے دو ایک ہفتے سے کہ یہ شیعہ اور سنی جھگڑا ہے, اور یہ پوری دنیا میں سلفیز اور وہابی کی ٹرم کو اب شیعہ سنی معاملے کی طرف ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ اس کو اس طرح پورٹری کر رہا ہے. اور اس میں وہ تمام فورسز جن کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پوری دنیا میں مسلم ورلڈ میں شیعہ سنی فساد ایک شکل عملی شکل اختیار کر لے, اس جانب یہ وہ کوشش ہے. اور یہ کوشش جب سے عراق پر جنگ مسلط کی گئی اور بش اور بلیئر جو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں 150,000 فوجی لا کر بٹھائے اور 300,000 معصوم انسانوں کا قتل کیا, تو جب سے یہ کوشش عراق میں جاری ہے کہ یہ جو شیعہ سنی فساد کی کوئی شکل عملی بن سکے جس کو وہ پوری دنیا میں کلیش آف سیولائزیشن کے بعد یہ کلیش آف جو سیکٹیرین کلیش ہے اس کو नाम दे सकें। तो ये हुआ नहीं है, और ये बात कोई नई नहीं है कि इनमें इराक़ के जो सुन्नी और शिया हैं ये मुत्तहिद अब हुए हैं, ये हमेशा से थे, इनकी इंटर मैरिजेज़ हैं और उनके कल्चर में हमेशा ये कभी तजाद था नहीं शिया और सुन्नी का। ये तो जो वहाँ पर दहशतगर्द भेजे गए हैं, जो अमेरिका सऊदी अरब ने मिलकर तैयार किए और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तैयार किए, चेचन से लेके यमन और पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो मदरसे हैं जितने वहाँ से भर्ती कर करके शाम में लाकर बिठाए गए, उनकी तरबियत की गई, फाइनेंस किया गया और अब तक हो रहा है। तो ये सारा उस तरफ का मामला है, और ये कोशिश है कि ये क्लैश जो है ये शिया सुन्नी, इस साल पाकिस्तान में भी इस क्लैश की कोशिश की गई है, और पिंडी का वाकया
जी
आपके सामने है। तो ये क्लैश बढ़ाया जा रहा है, इसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है, ताकि अमेरिका पर सऊदी अरब ये प्रेशर डाले रखे कि उसने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की क्यों पेशरफ की है। इसका एक पहलू तो ये है कि दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड में जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है
जी जी
वो वेस्ट को, मगरबी इस्तेमार को थोड़ी सी आंखें दिखाने का मामला है। दूसरा, इंटरनली सऊदी अरब के अपने अंदर जो तजाद है और जो उस बादशाहत जाबिर और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ वहाँ के जो अवाम का एक जज्बा मुत्तहिद होकर सामने आ रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने ये तरबियती कैंप और एक दहशतगर्दी की खेप शुरू की है। फिर शाम के हवाले से जो रूस, पुतिन ने जो स्टैंड लिया, तो वहाँ भी इन्होंने, बंदर ने कहा हम ये करेंगे, और चेचन जो है वो हमारे ही दहशतगर्द हैं पैदा करदा, तो वहाँ भी इन्होंने ये दो वाक़यात जो रिसेंटली हुए वो हैं। तो ये दहशतगर्दी का इजाफा सिर्फ इराक़ के ख़ास इलाके तक नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में तेज़ किया गया है। और ये जो ISI है, ये इसके अपने अंदर भी अब इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, और उसमें मालकी ने जो ये इजहार किया है ख्वाहिश का, और लोगों को इस जानिब मुतवज्जो किया है कि वहाँ के इलाके के लोग इनसे निपटें, और इलाके के लोगों ने निपटना शुरू किया है, और ISI के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इनके झगड़े हैं, इलाकाई झगड़े हैं, ट्राइबल पैसों पर झगड़े हैं। तो अल्टीमेट तो इन्होंने ख़त्म होना है, इसलिए कि ये कोई नेचुरल ग्रुपिंग किसी ख़ास मकसद के लिए तो नहीं है, सिवाय इसके कि दुनिया में सऊदी अरब अपनी तरह की शरीयत का निज़ाम नाफिज करना चाहता है और दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहता है। तो ये दहशतगर्द का जो है इनका मामला तो सिर्फ माल दौलत और अपनी जो पुश्तपनाही करने वाली ताकतें हैं उनसे मराहत और मफादात लेने का मामला है, और इसमें इनका टकराव पैदा हुआ है। इसमें एक पहलू और भी है कि अमेरिका ने जो हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई इराक की रोकी हुई थी
जी
वो रिलीज़ होने के बाद इन पर थोड़ा सा जो इनके ठिकानों पर जो बमबारी शुरू हुई है और इनको वहाँ से भागना पड़ रहा है, उसके नतीजे में भी ये शिद्दत उसको देखना चाहिए कि उसका भी ये रिएक्शन है, और ये थोड़ी देर करेंगे। और चूंकि वहाँ से ये सप्लाई कर रहे थे अपनी जो खेप है
जी
सीरिया के खिलाफ, वो अड्डा भी वहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो अल्टीमेट तो वो ख़त्म होगा, क्योंकि अवाम वहाँ के लोग भी उसके ख़िलाफ़ हैं, जो इराक़ हुकूमत है उसके भी इस वक्त हालात काफ़ी बेहतर लगते हैं, और अमेरिका भी शायद ये चाहता है कि वहाँ पर निगोसिएशंस शुरू हो, रिकन्सिलिएशन शुरू हो और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। तो इस सूरत में ये जो दहशतगर्द हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है, और ये घबराहट में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये अपने जो हमले हैं उसमें इजाफा कर रहे हैं, और सऊदी अरब ज़्यादा बौखलाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि इसराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील साहब। जनाब ये इराक में जो कुछ हो रहा है, जाहिर है कि इसमें जो जिस ग्रुप का नाम आ रहा है दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, और सऊदी हुकूमत की इसको हिमायत हासिल है, तो इसका नाम ही बताता है कि ये इस ग्रुप का मकसद क्या है, कि ये इराक और शाम में अपने मखसूस तर्ज की तकफीरी नज़रिए के हामिल हुकूमत कायम करना चाहते हैं। तो सऊदी अरब का किरदार तो इसमें बिल्कुल वाज़े है, इसमें अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है?
और देखिए, इसमें असल में इशू ये है कि इराक़ में जो एक स्टेबिलिटी पैदा हुई है और उसकी वजह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत वहाँ पर शिया लोग पार्लियामेंट में पहुँचे हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने हैं
जी।
ये वो चीज़ें हैं कि जो सद्दाम के ज़माने में बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। वहाँ पर शिया अक्सरियती आबादी को दबाया गया था और जुल्म व सितम का शिकार थी। अब वो लोग जो हैं मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के, उसका हिस्सा बन गए हैं, और हिस्सा बनने के बाद वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इराक़ के अंदर। जाहिर है कि जिस पॉजिटिविटी के साथ ये लोग चल रहे हैं और इराक़ को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं, इसमें वो शिया के साथ साथ आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच रखने वाले सुन्नी भी शामिल हैं। इस सोच के साथ जब ये इराक़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसी ममलिकत मजबूत बनाना चाह रहे हैं इस खित्ते के अंदर कि जो सेल्फ सफिशिएंट हो एक तरफ, और दूसरा जो बाकी दुनिया के ममालिक मुसलमान ममालिक उनकी भी मदद कर सके। यानी एक पैटर्न नज़र आ रहा है दुनिया को कि शायद ईरान के बाद इराक में भी उसी तरह का एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को ऐसे आगे बढ़ाना, जाहिर है बड़ी ताकतें किसी हाल में खुश नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा अजय साहब की ओपिनियन से कि इस वक्त अमेरिका का जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि ईरान के साथ अमेरिका का जो डायलॉग शुरू हुआ है उसके बाद बहुत सी जो हकायक है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए वो खुले हैं, इसलिए कि उनको अंदाज़ा हो गया कि पिछले 30-35 साल से उन्होंने ईरान के साथ जो टक्कर ली हुई थी उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला। बल्कि अब जब वो डायलॉग के प्रोसेस में आए हैं तो उन्होंने देखा है कि इससे पूरे रीजन के अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है कि जिससे वो खतरात जो मगरबी ममालिक के मफादात को लाहक थे इस खत्ते से, वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन यह है कि ईरान ने चूंकि बराबरी की बुनियाद पर मगरबी ममालिक के साथ एक डायलॉग किया है और इस बुनियाद पर उन्होंने उनको रियलाइज़ कराया है कि जो सऊदी अरब या बाज और ममालिक जो हैं इस खत्ते के, वो डिस्टेबलाइजेशन का बायस बन रहे हैं। इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि उनकी भी प्रायोरिटीज़ कुछ चेंज हो रही हैं। अब जिस तरह के ग्रुप यहाँ पर जिन्होंने सर उठाया है उसके पीछे मैं समझता हूँ कि इसकी चंद एक हफ़्ता पहले की बात है कि जो सऊदी शाह इनके एक नवासे ने जो फ्रांस में मुकीम है, वहाँ पर पेरिस में उन्होंने एक जगह पर गुफ्तगू करते हुए बड़े वाज़े तौर पे कहा कि सऊदी अरब की जो इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक बाकायदा ऐसा शोबा कायम किया गया है कि जिसकी असल ड्यूटी ये है कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में शिया के ख़िलाफ़ एक मुनाफरत पैदा करे और इस बुनियाद पर शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएँ और वहाबी नज़रिए को आगे बढ़ाया जाए। अब ये खुद जो यानी सऊदी सिस्टम का एक हिस्सा थे तुर्की बिन बंदर, उनकी ये एक इंकशाफ है, उन्होंने ये चीज़ बताई और उन्होंने ये भी बताया सिर्फ इस शोबे के पास जो बजट है वो उर्दन और त्यूनिस के मजमू बजट से भी ज़्यादा है। यानी इतना बड़ा पैसा इस काम के लिए खर्च किया जा रहा है और उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि जो कुछ शाम में हुआ, इराक़ में हुआ, और इसको अगर बाहम मिला के देखा जाए और जिस तरह का नाम है इस ग्रुप का, इससे वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि सऊदी अरब को इस वक्त सर्वाइवल का असल में मसला है और उनके साथ वाबस्ता जितने शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उनको भी सर्वाइवल का मसला है। यानी उनको अपनी बका की फ़िक्र है, इसलिए कि अब पूरी दुनिया में जो शिद्दत पसंदी है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है और जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उसका हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर देखा एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों का रुझान इनसे ख़त्म हो रहा है। लोगों में एक नफरत पैदा हुई है शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ और लोग पुरअमन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और इराक़ में भी लोगों ने जितने शिद्दत पसंद ग्रुप थे उनको शिद्दत से रिजेक्ट किया और अब एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन इस इन ऐसे हालात में वो जो बचे खुचे चंद लोग रह गए हैं शिद्दत पसंद ग्रुपों के, उनको अपनी बका मुश्किल नज़र आ रही है। वो अपने वजूद को बचाने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह की आखिर में चंद हरकतें करेंगे, जिसमें से एक ये सूबा अलंबार में हमें नज़र आ रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी जैदी साहब। जनाब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इराक में जो सूबा अलंबार में जो कुछ हो रहा है उस सिलसिले में अमेरिका और ईरान बकौल उनके एक ही सफ़े पर नज़र आ रहे हैं कि ईरान ने भी मुखालफत की है और अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि इस ऑपरेशन में वो इराक़ की हुकूमत के साथ है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान दुनिया के हर खित्ते में हत्ता खुद अमेरिका के अंदर भी अगर दहशतगर्दी का कोई वाक़या रुनुमा होता है या कहीं इंतहा पसंदी की तहरीक चलती है तो ईरान उसकी भी मुखालफत करेगा। ईरान पूरी दुनिया से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका और उसके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, क्या ये बात उनसे पोशीदा है कि इस खित्ते में ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी और मज़हबी दहशतगर्दी की जो भी शक्लें हैं वो सब सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में अंजाम पा रही हैं? दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम को सऊदी हुकूमत की पूरी पूरी हिमायत और सरपरस्ती हासिल है, लेकिन किसी भी अमरीकी रहनुमा का कोई भी बयान सऊदी हुकूमत के सिलसिले में कम से कम मेरे सामने नहीं है। अभी जान कैरी साहब ने जो सऊदी अरब का दौरा किया उसमें भी उन्होंने, यानी कोई ख़बर ऐसी नहीं आई है कि इस हवाले से उन्होंने कोई गुफ्तगू की हो और सऊदी हुकूमत को ज़बानी भी सरजनिश की हो कि दहशतगर्दी का यह सिलसिला बंद किया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे इस सूरत, यह जो सूरत है?
जी, ये आपकी बात बिल्कुल, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो सरजनिश हमें नहीं नज़र आई और ना ही आएगी। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मुझे वो इख्तलाफ समझ में नहीं आया जो कंदील साहब को मुझसे हुआ। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे समझा दीजिएगा। मेरी गुफ्तगू वही, इन्होंने पॉइंट्स आगे बढ़ाए हैं जो मैंने कहे थे। बट एनीवे, पाकिस्तान में ये तरीका बन गया कि इख्तलाफ बरा इख्तलाफ करने की आदत है हमारे वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वहाँ ये जो सऊदी अरब की सरजनिश है ये नहीं होगी, चूँकि जो याल्टा आप के इल्म में है कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद 1945 में क्विंजी के जहाज़ पर जब इब्ने सऊद और रॉजवेल्ट का माहदा हुआ था जो अब सामने आ गया है, उसके तीन अहम पॉइंट थे। एक तो ये पॉइंट था कि सऊदी हुकूमत की प्रोटेक्शन अमेरिका करेगा, इब्ने सऊद की जो हुकूमत है जो अब सऊदी अरब हुकूमत कहलाती है। दूसरा उसका जो अहम नुक्ता था वो ये कि सऊदी अरब गारंटी करेगा कि जो तेल की सप्लाई है वो अमेरिका को जारी रहेगी
जी।
और तीसरा कि फलस्तीन में जो यहूदी आबाद हो रहे हैं उनमें सऊदी अरब उनकी मदद करेगा, और 1949 में फिर इज़राइल की रियासत कायम हुई। तो ये वो तीन पॉइंट थे जो अब आकर एक्सपोज हुए हैं। ये खुफिया माहदा था, उस माहदे की रूह से सऊदी अरब की हुकूमत की पुष्ट पनाही और प्रोटेक्शन अमेरिका की जिम्मेदारी है। चुनाचे वो अंदर से अगर ना भी चाहें और उससे ना भी खुश हों तो वो उसका इजहार नहीं करेंगे। इसलिए वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद बात सामने सरजनिश वो शायद ना आए। और यूं भी अमेरिका तो हर तरह के उस पर हाथ रखता है, यानी जीतने वाला घोड़ा भी आजकल उसका होता है और हारने वाला भी उसी का होता है। ये दहशतगर्द और सऊदी अरब और अमेरिका, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। ये आपको भी मालूम है, सारी दुनिया पर अब एक्सपोज हो चुका कि ये लाजिम व मलजूम है, ये दहशतगर्द सऊदी अरब और अमेरिका उसी के पैदा करदा हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी हुकूमतें हैं जिनको वो प्लांट करते हैं, जिनकी हेल्प करते हैं, वो भी उन्हीं की होती हैं, और वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर उसके मफादात का तहफ़ुज़ करती हैं, या अगर ये नज़र आ रहा हो कि आपस में उनका इख्तलाफ है तो फिर भी जो उनकी तनावें हैं वो एक ही आका के पास होती हैं, और जो कौमें तीसरी दुनिया की बिलखसूस जो गुलाम हैं, जो अमेरिका की मदद पर जिनका दारोमदार है, जो कशकोल लेके फिरती रहती हैं, उनके यहाँ तो ये बात तो बहुत आसान है। वहाँ पर दहशतगर्द भी अमेरिका पैदा करता है और वहाँ के हुक्मरान भी अमेरिका पैदा करता है, और फिर जब चाहता है उनको लड़ा देता है, और आपस में लगता है कि शायद ये कोई इख्तलाफ है इनका, लेकिन असल में मालिक तो एक ही है। तो
जी
ये जो सरजनिश है, ये आपको अमली तौर पर या इसका इजहार मीडिया में या उस तरह नहीं नज़र आएगा, लेकिन चूंकि ईरान और अमेरिका की पेशरफ जो हुई, इससे सऊदी अरब, कतर और ये जो शेखटम्स हैं,
जी
ये कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली जो GCC की मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी अरब का जो प्लान था कि ये अरब यूनियन बनाई जाए, उसमें ओमान ने बड़ा वाजे तौर पे स्टैंड लिया कि हम GCC की मीटिंग मेंबरशिप से भी निकल जाएंगे
जी
अगर यूनियन की बात हुई, और यूनियन के बहाने सऊदी अरब बहरीन को अनेक्स करना चाहता था, ताकि वो उसका, जबकि बहरीन पर ईरान का पुराना क्लेम भी है और बहरीन हमेशा ईरान का हिस्सा रहा हुआ है। तो अमेरिका की अगर हिमायत हासिल होती सऊदी अरब को एज सच, तो फिर ये GCC में जो इंतशार नज़र आए, बल्कि UAE ने भी स्टैंड लिया कि हम कोई अरब यूनियन के लिए तैयार नहीं है, और अरब यूनियन जो बननी थी वो ऑब्वियसली ईरान के ख़िलाफ़ बननी थी। तो
जी
ये जो डेवलपमेंट्स नई हो रही हैं, ये बड़ी अहम हैं, और मिडल ईस्ट का जो नक्शा जो कोंडालिसा राइस चेंज करना चाह रही थी, वो उस तरह तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अवाम के और वहाँ की जो इमर्जिंग ताकत है, जो कि ईरान एक वहाँ की एक इमर्ज हो चुकी हुई ताकत है,
जी
मामला उसके हक़ में जा रहा है, और उससे ये सऊदी हुक्मरान और ये तमाम वो सलफीज़ जो कि जवाल पज़ीर दहशतगर्दों की ताकत है, ये जवाल पज़ीर ताकत है, ये घबराए हुए हैं, और ये ज़्यादा देर मामला ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीरिया में अगर
जी
ना इनको कामयाबी हो जाती, और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पुतिन को,
जी
और पुतिन और यहाँ पर जो पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ किया अंगूठा लगाने पर और फौजें भेजने पर सीरिया के
जी
ख़िलाफ़, तो उसके बाद सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है, और ये सऊदीज़ और शेखडम्स ये अब ऑन देयर वे आउट, यानी ये जवाल पज़ीर ताकतें हैं, और अंदर से अब इनमें वो मजबूती नहीं है जो कि दुनिया को दिखाई जाती थी या दुनिया को नज़र आती थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब से। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
कैसे मिजाज है?
खुदा का शुक्र है जनाब। इराक़ की जो सूरत हाल है, यह सूबह अलंबार में फ़ौज का ऑपरेशन जारी है, रमादी, और अलंबार पर दौलतुल इस्लामिया फिल इराक़ व शाम वालों ने यह कब्ज़ा कर लिया था। इन दोनों शहरों को तो आज़ाद करा लिया गया है, फल्लूजा में अभी वो बाकी हैं। ये जो सूरत हाल है कि वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ एक पूरे सूबे पर तकरीबन जो दहशतगर्द काबिज़ हो गए थे, और इसको शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपका तज़िया क्या है?
मैं समझता हूँ कि देखिए, इराक में इस वक्त वफाकी जमहूरियत है,
जी
और जितने सूबे हैं उसमें जितनी कौमियतें हैं उन सबों को इंतहाई खुद मुख्तारी मिली हुई है।
जी
लिहाजा ये तो करीने कयास में बात आती ही नहीं कि
जी
इनमें से किसी का इस्तेहसाल हो या किसी की हमसलफी हो। अलबत्ता सद्दाम हुसैन के जमाने में एक
जी
फस्ताई हुकूमत थी, मरकज का हर जगह अमल दखल था और इलाका खुद मुख्तारी नाम की कोई चीज जो उसका तस्वुर नहीं था। तो अब अब इराक में जो जमहूरी अमल शुरू हुआ है, देखिए इंतखाबात हुए हैं
जी,
और वहाँ कसीरुल जमाती जमहूरी निज़ाम शुरू हुआ है, तो बड़ी खुशाइन बात है
जी।
और सबसे बात तो यह है कि इराक के अवाम ने खास तौर से अमरीका पे वाजे कर दिया कि अमरीका का एक सिपाही भी वहाँ पे नहीं रह सकता
जी।
जबकि अफगानिस्तान में चुनाव दादे पड़े हुए हैं और जाहिर शाह साहब तय कर चुके हैं कि भाई हम उनको 9 शहरों में अमरीकी फौजों को तैनात करने का दे देंगे, कई की इजाजत दे देंगे ताकि वो वहाँ जो भी हुकूमत बने अमरीका अमर दखल रहे, वो उसके पिट्ठू की हैसियत से रहे। तो इराक में की सोच आनी सही मानों में इराक अब आजाद हुआ है
जी।
और जमहूरी तलबा वहाँ कामयाब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाज़ कुवतें ऐसी हैं, अस्थाई कुवतें जो इस अमल से खुश नहीं है। और मशरक वस्ता का तो आलम यह है कि ईरान के अलावा और किसी मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं है, क्योंकि ईरान में तो इंतखाबात का तसलसल रहा है और कभी इंतखाब मौखर नहीं किए गए ईरान के अंदर, और यह बताते खुद जमहूरी की अलामत है। चुनांचे इराक में भी वही अमल शुरू हुआ है, और अगर इसको सियासी तनाजों में देखा जाए तो कम अज कम 3 सूबों पर तो सुन्नियों की अदद ही बदतरी है, वो उनकी अक्सरियत है, तो वहाँ की खुद मुख्तारी कौन कसब कर रहा है। लिहाजा ये मसनू इख्तलाफात से पैदा किए गए हैं, और मैं शुरुका की इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये दहशतगर्दी जाहिर सी बात है दरामद शुदा है, बैरूनी मदाखलत कर किया है, और उसमें जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो सिलसिला जिम्मेदारी शुरू हुई है, हालांकि अभी बड़े नशे में फरार आने हैं, और मैं खुश यानी मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि इतना आसान अमल होगा, लेकिन अमरीका की बात समझ में आ गई है कि ईरान का मौकिफ अटल है और वो उससे मुनरिफ नहीं हो सकता, लिहाजा वो मकामत के लिए आमादा हो गया है। तो ऐसी तनाजुर में जबकि अमरीका खुद अलकायदा से आजिज है
जी,
मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो अलकायदा की सरपरस्ती करेगा, ये बात अक्ल सलीम में आती ही नहीं। हाँ, सऊदी अरब जाहिर सी बात है कि बज़ाहिर को अमरीका से ये कहता है कि वो अलकायदा और इंतहा पसंदी के खिलाफ है, उसने बहुत से ऐसे उलमा को और पेश इमामों को बर्खास्त कर दिया है जो इंतहा पसंद, लेकिन दरअसल उन्होंने इसको बर्खास्त किया है वो मलूकियत के खिलाफ थे, वो शहनशाहियत के खिलाफ थे, तो उन पर इंतहा पसंदी का इल्जाम लगा के उन्होंने और अमरीका को बेवकूफ़ बनाया, अमरीका इस चीज़ को समझता है। तो अमरीका तो इस वक्त अलकायदा की बगावत में हरगिज़ हरगिज़ कोई किरदार अदा नहीं करेगा। हाँ, सऊदी अरब तो इससे भी खुश नहीं है कि ईरान के साथ अमरीका की मुफाहमत हो गई, उसको उसने तारीखी गलती करार दिया है
जी।
और कहा है कि साहब वो नियत पे मबनी है, इसका जो अंजाम है वो नियत पे मबनी है, वह ये नियतों का हाल जानते हैं, इनमें गैब हैं कि जो माहदा किया जा रहा है तो जो माहिर हजरात हैं उनके नियत में कोई फतूर है, कोई खोट है, तो ये तरीके हैं। दरअसल पाकिस्तान पर जो दबाव है ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मनसूबे को खटाई में डालने का, वो सऊदी अरब की मदाखलत कुछ ज्यादा है बनबत अमरीका के। मैं समझता हूँ कि ईरान और अमरीका के ताल्लुक दोनों बेहतर होंगे तो अमरीका की मुजामत कम होती जाएगी, क्योंकि जिस किस्म की पाबंदियाँ वायद कर रहा है उस किस्म की पाबंदियाँ जो है अब नहीं लगेंगी तेल के ये पाइपलाइन के मनसूबे की तकमीर में, वो सिलसिला तो अब किस्से पारी ना हो गया है। हाँ, सऊदी अरब को अलबत्ता पेट में विरोध उठ रहे हैं, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अवाम सस्ती गैस और सस्ती बिजली ईरान से हासिल करें, और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बोर पैदा करने के लिए कभी जिंदुल्ला है कभी कोई और तंजीम है, उसकी सरपरस्ती आखिर कौन करता है? जाहिर सी बात है ये 1% अनासिक करते हैं जो मुलुकियत का तहफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खौफ इस बात का है कि देखिए ईरान में तो जमहूरियत मुस्तहकम हो गई, इराक में भी जमहूरियत कामयाब हुई, दो इंतखाबात हो चुके हैं, तो अब ये सिलसिला फैलेगा ना, ये रुकेगा कभी? इसमें इन्होंने साजिश करके उसको जमहूरियत के अमल को इन्होंने मुअत्तल कर दिया, लेकिन तब कहे तो आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बड़ा मजबूत है, जिस वजह से सऊदी अरब मैं समझता हूँ कि वो अलकायदा की दरपदा जरूर हिमायत कर रहा है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील अब्बास साहब, एक मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है। सऊदी अरब जिस तरह से इस खित्ते में और इस खित्ते से बाहर दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है, हत्ता पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी पाई जाती है उसमें भी सऊदी अरब का नाम आता है, और अभी उसने जो रूस में जो धमाके हुए हैं उसके सिलसिले में पुतिन ने साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि इसमें सऊदी हुकूमत के हिमायत के हामिल दहशतगर्दों का हाथ रहा है। हत्ता उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी हुकूमत का नाम दहशतगर्द हुकूमतों की फहरिस्त में आना चाहिए। तो ये जो मगरबी ताकतें हैं वो सऊदी हुकूमत को ख़तरा करार क्यों नहीं दे रही हैं, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि शाम में जो दहशतगर्द हैं वो जब वापस जाएंगे खुद यूरोप में तो वहाँ के लिए भी खतरात पैदा करेंगे। एक मिनट का वक्त है हमारे पास।
इसी नुक्ते के ऊपर मैंने जैदी साहब की बात से इख्तलाफ किया था कि इस वक्त जो अमेरिका और सऊदी अरब है इराक के बारे में या खित्ते के बारे में एक पेज पर नहीं है, बल्कि सऊदी अरब तन्हा हो गया है। और इस वक्त अमेरिका में ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि जैसे उन्होंने जिहादियों को पैदा करके अफगानिस्तान में अपने मुखालिफ भी तैयार कर लिए, उनको साथ निपटना पड़ा, अब इराक के अंदर भी वो अमेरिका को पता है कि अगर वो मजीद अलकायदा को या शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करेगा तो खुद अमेरिका के लिए वबाल जान बनेंगे। इसी बुनियाद पर उन्होंने इराक की सपोर्ट की बात की है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और जो मगरबी ममालिक हैं उनमें भी बड़ी हद तक ये रियलाइजेशन पाई जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि मगरबी मीडिया की तरफ से और मगरबी ममालिक में ये आवाज़ उठेगी कि सऊदी अरब के अंदर भी जमहूरियत आनी चाहिए, वहाँ पर भी बादशाहत का खात्मा होना चाहिए, और इसके साथ साथ पूरे खित्ते में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात की जाएगी। इसलिए कि इस मूवमेंट के जो एक सम्राट हमें ईरान की वजह से नज़र आते हैं वो पूरे खित्ते में देखना चाहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील
अब्बास। इस वजह से पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा होगा जो पूरी दुनिया में एक पीस और हारमनी की बात करे।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। इसी के साथ हम प्रोफेसर शमीम अख्तर और अली जाफर जैदी के भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा।